तो योग के बारे में चर्चा कर रहे थे और जो अलग अलग तरह के योग हम आजकल देखते हैं या कहीं कहीं रेफरेंसेस मिलता है, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग, राजयोग, अलग अलग जगह पर आपको बोर्ड में भी लिखा हुआ मिलेगा और लोग प्रचार करते हुए भी मिलेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये जानने की कोशिश की योग क्या है और ये जो अलग अलग योग हैं उनकी बेसिक क्या जरूरतें थी, और उनमें से हमने ये भी लास्ट टाइम जाना जो हठ योग है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आज के डेट में पूरे संसार में। हठ योग मतलब जो मैट पर आप जो करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, आसन, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन का जो जो सुपरफिशियल वर्जन है, जो हठ योग का वर्जन है, और आजकल तो वो कुंडलिनी चक्र मोस्ट ऑफ योगा स्टूडियो में योगा टीचर आपको ये सिखाते हुए मिलेंगे। ये सब हठ योग का विषय था, वो हमने लास्ट टाइम जाना। तो आज हम जानेंगे उसमें से बाकी जो कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, वो क्या एक्चुअली क्या चीज है। फिर समराइज्ड करेंगे जो लास्ट योग है राजयोग, तो उसमें हम कंक्लूड करेंगे। तो पहले देखते हैं कर्म योग के बारे में। कर्म योग डेफिनेटली जहां कर्म एक्शन ही आपका साधन हो परमात्मा को पाने का, सेल्फ को, आत्मा को रियलाइज करने के लिए, जहां आप कर्म को, काम को, अपने एक्शन को ही इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं। अब काम को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे वो गीता में आते हैं ना, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत। दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं जो बिना काम किए एक मोमेंट के लिए, क्षण के लिए भी रह सकता है। काम तो सबको करना पड़ता है, और जो लोगों जिन लोगों को ये गलत धारणा है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति की या परम सुख की, सुप्रीम हैप्पीनेस को पाने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, काम धंधा भी, वो भ्रम में रहते हैं। क्योंकि बिना काम के तो आप बैठना भी काम है, खाना भी काम है, पीना भी काम है, सोना भी काम है, क्या क्या छोड़ोगे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं काम छोड़ नहीं सकते हो, हाँ काम के साथ कुछ ऐसा करो कि वो काम ही तुम्हारी पूजा बन जाए। तो जो लोग बहुत ज्यादा रजोगुणी हैं, रजोगुणी मतलब जो बहुत डायनेमिक हैं, जिनको काम करना है, दे हैव टू वर्क, इसलिए नहीं कि उनकी जरूरत है, इसलिए कि उनके अंदर से इसी तरह का इंपल्शन है, इसी तरह की प्रेरणा है, उनको काम करना है। वो लोग अपने काम करते समय अपनी एटीट्यूड चेंज कर दें तो काम भी योग बन जाता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे सबसे बढ़िया जो हमारे लिए गुरु हैं, ये चींटी है। चींटी काम करते हैं, और दो तीन चीजें चींटियों के बारे में जानने लायक हैं। अगर आप कर्मयोग की प्रैक्टिस करते हैं, करना चाहते हैं, तो चींटियों को गुरु बनाइए। चींटी मतलब एंट्स, वो हमेशा काम करते हैं। कोई भी चींटी कभी आपको खाली बैठा हुआ नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ चींटी होती हैं जो खाली बैठते हैं, ऐसा भी नहीं बिल्कुल। देखिए ठगने वाले तो हर जगह होते हैं, इस पिक्चर में भी देखिए सारे चींटी काम कर रहे हैं, एक है नाम लेने वाला, वो तो इंसानों में भी होते हैं, है ना। ज्यादातर लोग काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो काम ना करके वो होते हैं ना, गणेश परिक्रमा करके नाम ले जाते हैं, पर वो रेयर होता है, चींटियों ओवरऑल कॉन्स्टेंटली काम करते हैं और वो काम का रिजल्ट कुछ भी हो स्टिल दे आर वर्किंग. उनका घर उजड़ जाए, जो खाना रखा था खराब हो जाए, फिर वो दूसरा खाना लाने लग जाते हैं. तो जो चींटियों का व्यवहार है मनुष्य को दो चीजें सिखाता है, काम करना, काम करने के लिए मिलजुल के करना, और नंबर तीन कर्म योग का भी बड़ा सिद्धांत है कि आप काम करते जाओ, फल जो भी होगा देखा जाएगा, फल मिलेगा ये सोचकर काम नहीं करना. कर्म योग का बेसिक कंसेप्ट भी इसी से मिलता जुलता है कि आपको जो काम करना है करिए, बस उस काम के साथ जो आपकी अटैचमेंट है या जो आपकी काम के जो रिजल्ट्स है उसके साथ आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसको आप चेंज कर लीजिए तो वही काम आपका कर्मयोग बन जाएगा. गीता में कृष्ण लिखते हैं यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. गीता 4:9. क्योंकि है अर्जुन तुम्हारा जो काम जो कर रहे हो वो काम यज्ञ के लिए होना चाहिए, यज्ञ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी तुम्हें इस जो कर्म बंधन है जो बॉन्डेज ऑफ एक्शन एंड रिजल्ट्स उसे छुटकारा मिलेगा. जो योग का जो पर्पस है कि परमात्मा को पाना या आत्मा को रियलाइज करना जिससे कि तुम्हें परम सुख मिल सके, वो कर्म के द्वारा भी हो सकता है अगर तुम कर्म को यज्ञ के तरह करोगे. बाकी यज्ञ के अलावा कहीं भी कर्म करते हो वो कर्म तुम्हें बांधने वाला बनेगा. इसलिए ही अर्जुन मुक्त संग, वो यज्ञ और मुक्त संग में कुछ कुछ रिलेशनशिप है. मुक्त संग विदाउट एनी अटैचमेंट, फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट काम करते रहो. यज्ञ क्या है? आप लोग मोस्टली हवन करते हैं और हवन के आखिर में हर मंत्र के अंतिम में आप बोलते हैं स्वाहा इदं न मम, ये मैंने ऑफर किया कुछ दिया और ये मेरा नहीं है. यही है, आप दे रहे हो, आप घी डाल रहे हो, आप सामग्री की आहुति डाल रहे हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप पर मंत्र के एंड में आप बोलते हो ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं. लोगों को खाना खिला रहे हो, आप एंड में बोलते हो ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माइन. ये है यज्ञ का कोर वैल्यू. आप अपने साथ साथ सबका ख्याल करो. आपका काम ऐसा होना चाहिए जिसमें अपने साथ साथ सबका भी भला हो, पर दूसरों की भला करते समय दो चार प्रॉब्लम्स आते हैं. वो प्रॉब्लम्स क्या है डिस्कस करते हैं, फिर यज्ञ पर आएंगे. और वो प्रॉब्लम है स्ट्रांग सेंस ऑफ ईगो पैदा होता है. आप जब भी कोई काम करते हैं, बुरा काम तो छोड़ दीजिए, इवन अच्छा काम भी करते ईगो आ जाता है, मैं अच्छा आदमी हूं, मैंने ये अच्छा काम किया, मैं दूसरों का भला किया, मैं ये कर रहा हूं, तो ईगो पैदा होता है. और कॉन्शसली या अनकॉन्शसली फिर हम उस कर्म के जो फल है, रिजल्ट है, क्या मिलने वाला है या क्या मिलेगा, उससे हम अटैच्ड हो जाते हैं. जब आप कर्म के फल से अटैच्ड होते हैं तो उसके दो तरह के रिजल्ट होता है, या तो आप सुखी होते हैं या दुखी होते हैं. अगर रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ तो आप खुश होते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन से कम हुआ या नहीं हुआ तो आप दुखी होते हैं. और काम करते समय जो तीसरा हमारा एक नेचुरल प्रॉब्लम जुड़ा होता है कि वो रिजल्ट, अगर सपोज ये मान के भी चले रिजल्ट क्या होगा मुझे उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं प्रेज और रिकॉग्नाइजेशन, लोग मेरी तारीफ करें और मुझे उसका रिकॉग्नाइजेशन मिले कि मैं कर रहा हूं, ये भाव तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे अंदर रहता है। और यही जो भाव है, कर्म का, काम करने का फल कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा और वो फल किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, उसके साथ जो स्ट्रांग सेंस ऑफ ईगो पैदा होता है कि रिकॉग्नाइजेशन मिले, प्रशंसा मिले वगैरह, वो हमारे एटीट्यूड को चेंज करता रहता है। और अगर हम ये दो तीन चीज पर काम करते हैं तो फिर वो कर्म यज्ञ बन जाता है। आप काम करते हो पर कहते हो कि परमात्मा की कृपा से हो रहा है, कहने की बात नहीं है, ये भी जरा मैं क्लारीफाई कर दूं, यहां भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग कहते हुए मिलेंगे, आप कैसे हैं? भगवान की कृपा से। हाँ जी, अच्छा घर है, बस प्रभु की कृपा से। तो ठीक है, अगर आपने अगर ऐसा बोला कि प्रभु की कृपा से पैसा है, प्रभु की कृपा से घर है, प्रभु की कृपा से हेल्दी है, मैं उसको क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, पर वो एक्चुअली क्या अंदर से ऐसा हम सचमुच सोचते हैं या सिर्फ हमने एक हाइपोक्रिटिकली ऐसा एक बना रखा है उसको ना पाखंड के रूप में। अंदर तो यही है भाव कि मेरे पास जो है वो मेरे मेहनत की कमाई है, मेरे माँ बाप ने मुझे दिया या मेरी कमाई का है, जो भी है। पर हमने बार बार या तो मंदिर में सुना या इधर उधर सुना तो हमने एक आदत बना दिया, भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से। तो वो सिर्फ जो कहते ना लिप एक्सरसाइज है, मतलब ओंठ की एक्सरसाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं जेन्युइनली ऐसा समझने लग गया कि जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूं वो सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं, जो कुछ भी मैं क्लैरिफाई कर दूं, बुरे काम नहीं है, मतलब बुरे काम का हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम के भी जो प्रॉब्लम होते हैं, अच्छे काम करने में ईगो पैदा होता है, रिकॉग्नाइजेशन की चाहत होती है कि लोग मुझे जाने माने, उन चीजों पर हम बात करते हैं। कर्म योग का बुरे कर्मों से, किसी को मारना, काटना, गाली देना, उन चीजों से लेन देन नहीं है। अच्छे कर्म, पहली चीज है कि आप कर्म अच्छा करेंगे और वो अच्छे कर्म को कैसे करेंगे, उससे वो कर्म योग में कन्वर्ट हो जाता है। तो काम करते समय और प्रभु के द्वारा अपने आप को साधन मान के करना, जो फल मिले, अच्छा मिले, बुरा मिले, एक्सपेक्टेड हो, अनएक्सपेक्टेड हो, कम हो, ज्यादा हो, सब प्रभु का प्रसाद मान के चलना, ये कर्म योग की शुरुआत होती है। थोड़ा एक आधा आपको स्लाइड दिखाते हैं फिर। तो इन ए नॉटशेल, अपनी ड्यूटीज को, हर कर्म को ड्यूटी समझ के करना, कर्तव्य समझ के, जो भी हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है, सामाजिक कर्तव्य है, या उनको भी हम ड्यूटी समझ के करना, पहली। दूसरी, डिटैच्ड सेंस के साथ, उसके साथ अपने आप को जोड़ के, डूअरशिप को अलग रख करके करना। तीसरी, जहां भी हमारा स्वार्थ छुपा हो, सेल्फिशनेस किसी भी काम में, इससे मुझे क्या क्या मिलेगा, उसको एलिमिनेट करके, जो डिटैच्ड होकर के काम करते हैं, वो काम आपका योग में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपको ईश्वर की यात्रा की ओर, स्पिरिचुअल जर्नी की ओर, आध्यात्मिक यात्रा की ओर आपको ले चलता है। तो बेसिकली दो चीजें, पहले है कि आप अपनी जो भी काम आपको मिले ड्यूटी समझ के करना। नंबर टू, जो सोशल ऑब्लिगेशन है उनको ड्यूटी समझना, न कि आप किसी पर फेवर कर रहे हो। जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे दान के ऊपर, जब भी हम दान देते हैं किसी की भला करने के लिए, चैरिटी करते हैं, डोनेशंस देते हैं, किसी के लिए कोई फेवर करते हैं, तो उसके दो तरीका है। पहले तरीका कि जो कॉमन लोग करते हैं कि मैं, मेरे पास ये एबिलिटी है, मैं, मेरे पास पैसा है, ये गरीब है तो मैं इसको हेल्प कर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं काइंड हार्टेड पर्सन हूं, ये अनपढ़ है मैं उसको पढ़ा रहा हूं, अच्छा काम कर रहे हैं आप। लोग परेशान हैं, बीमारी में हैं, कोरोना फैला हुआ है, लोगों के पास सुविधा नहीं है, आप डोनेशंस देते हैं उनको सुविधाएं मिले। पर इसका एक दूसरा भी साइड है, इसी काम को आप एक दूसरे एटीट्यूड के साथ कर सकते हैं, वो क्या है, क्योंकि प्रभु की कृपा से मेरे पास है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जिनके पास नहीं है उनके लिए कुछ करूं। इस भाव से नहीं कि मैं काइंड हार्टेड हूं, मैं दयावान हूं, मैं दया कर रहा हूं, आप दया नहीं कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, ये समझ के कि ये मेरी ड्यूटी है, जो भी मेरे से कमतर है मैं उनके अच्छा करने की कोशिश करूं। अब ये सेंस ऑफ ड्यूटी आसानी से आता नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपका मदद भी करूं, आपको दान भी दूं, आपको हेल्प भी करूं, और ये भी सोचूं कि मैं ड्यूटी कर रहा हूं, क्यों भाई, मैं तो फेवर कर रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर दया कर रहा हूं, व्हाई शुड आई थिंक दैट आई एम डूइंग माय जॉब, मेरा जॉब थोड़ी है, मैं तो अपनी मेहनत से पैसा कमाया, मेरा जॉब थोड़ी है कि कोई पड़ोसी में भूखा मर रहा है कि मैं उसको खाना खिलाऊं, दिस नॉट माय ड्यूटी। मैं तो मेरे अंदर काइंड हार्टेडनेस है, मैं दयावान हूं, मेरी दया आई, या मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं इसीलिए मैं कर रहा हूं। कर्म योग का मतलब है जब आप ये समझते हो, इस रियलाइजेशन के साथ करते हो कि सब कुछ प्रभु का है, मेरी जो एबिलिटी है वो भी परमात्मा की दी हुई है, ये संसार भी परमात्मा का है, पड़ोसी भी परमात्मा का, मैं भी परमात्मा का, मेरे अंदर जो, मेरे पास जो पैसा है वो भी परमात्मा की कृपा से, पैसा कमाने की जो एबिलिटी है वो भी परमात्मा की कृपा से, तो मेरे पास जो है वो मेरा नहीं, उस प्रभु का है, तो अगर संसार में किसी को जरूरत है वो भी प्रभु के संतान है, मेरा ड्यूटी है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, ये जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उसको ऑब्लिगेशन मान के, ड्यूटी मान के करना कर्म योग की बेसिक होता है, फाउंडेशन होता है। और उसमें डूअरशिप का कोई सेंस ना हो, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है, ये भाव ना हो। अगली चीज है, किसी भी काम को जब हम करते हैं उस काम के पीछे जो एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड से वो काम काम होता है या योग बन जाता है ना। इस स्लाइड दिखाने से पहले दो तीन बातें करेंगे, फिर आपको वो क्लियर होगा। हम अच्छा काम भी करते तो भी दुखी मिलते, बुरा काम करके भी दुखी मिलते हैं। एक शहर में एक प्रोफेसर, ये कहानी मैंने पहले अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सुनाया है, पर यहां दोबारा सुनाना भी जरूरी है, जिन लोगों को नहीं पता उनको पता रहेगा, सो ये हेल्प करेगा आपको कर्म और कर्म योग की जो डिफरेंसेस है उसको समझने में। तो एक शहर में, एक यूनिवर्सिटी में, एक प्रोफेसर ने अपने कुछ बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट था कि शहर के एक स्लम में जाकर के, जहां गंदे लोग रहते हैं, मतलब गंदगी के साथ रहते हैं, उनको एजुकेट करना, उनको उनकी स्लम एरिया को साफ करना और उनको एजुकेट करना, धीरे धीरे उनके अंदर क्लीनिनेस उस सोसाइटी में लाना, उस स्लम एरिया में लाना जिससे कि वहां लोग बीमार कम पड़े। तो चार पांच बच्चों ने प्रोजेक्ट लेकर के स्लम चूज किया जहां मोस्ट ऑफ टाइम ज्यादातर समय लोग बीमार रहते हैं, बच्चे हो बड़े हो बीमार रहते हैं, क्योंकि सब तरह गंदगियां फैली हुई है, ढंग का टॉयलेट नहीं, कूड़ा कचरा सब जगह फैला हुआ है, घर के अंदर भी कूड़ा है, साफ सफाई कम होती है, लोगों के अंदर दैट सेंस ऑफ जो क्लीनलीनेस है वो नहीं है। तो वो चार पांच बच्चे गए प्रोजेक्ट लेकर के, वहां उन्होंने सफाई करना शुरू किया आसपास एरिया को, लोगों के घर में जाकर भी सफाई की और उनको बताया सफाई क्यों जरूरी होती है, आपको अच्छा फीलिंग होगा, आप बीमार कम होंगे। तो उनके बच्चों को, बच्चे आठ आठ दस दस दिन तक नहाते नहीं थे, उनके बाल सूखे हुए, धूल अंदर घुस के बिल्कुल वो चिपक चिपका हुआ हो जाता है। तो उन बच्चों को धीरे नहलवाया साबुन फाबुन लगवा करके, उनको बोला हफ्ते में एक बार दो बार साबुन लगा के ऐसे नहाओ, पूरी तरह पानी में नहाओ। तो पूरा एक पूरे स्लम को अच्छी तरह साफ किया। तो लोग भी बड़े खुश हुए जो स्लम में रहते थे, जो बच्चे काम कर रहे थे वो भी बहुत खुश थे कि हमने कुछ किया। आपको भी अच्छा लगता है ना, जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं, किसी का भला करते हैं, यू फील गुड। उनको भी गुड फीलिंग हुआ, बहुत अच्छा लगा कि हमने आज कुछ अच्छा किया। और प्रोफेसर ने कहा था यू हैव टू, आपको ये लंबे समय तक करते रहना होगा क्योंकि ये लोग इतना आसानी से नहीं सुधरते। फिर वो अगले दिन भी आए, एक हफ्ते तक कंटिन्यूअसली रोज आए, रोज सफाई करते थे आसपास के एरिया, लोगों के घर जाकर सफाई करते थे, जो बच्चे नहीं नहा पाते थे उनको नहलाते थे, साफ सफाई करते थे और लोगों को एजुकेट भी करते थे। टाइम बीतने के साथ साथ उनको लगा एक दो हफ्ते अब हो गया है, अब हम थोड़ा कम आना करेंगे। अब वो हफ्ते में दो दिन आने लगे। तो जब दो दिन आने लगे, जो बाकी चार दिन देखा वो गंदगी की वही गंदगी की वही गंदगी है। अगर वो संडे को करके गए और वेंसडे आए, रविवार को करके गए और बुधवार को आए, तो सोम मंगल दो दिन में फिर गंदगी हो गई थी, कोई नहीं साफ करता, बहुत कम लोग है रेयर जो साफ करते। पर वो तब भी काम करते रहे, उनको खुशी मिलती रही, दूसरों का भला करने का जो खुशी होती है वो करते रहे। इस तरह दो तीन महीने तक वो कॉन्स्टेंटली काम करते रहे और उनको लगा कि अब ये लोग एजुकेटेड हो गए होंगे, समझ गए होंगे, अब हमें आने की जरूरत नहीं। तो 15 दिन तक वो नहीं गए, 15 दिन तक नहीं गए। जो 15 दिन के बाद दोबारा इंस्पेक्शन करने के लिए गए, सचमुच वो स्लम जिसको हमने 2 महीने तक सफाई की, ट्रेंड किया, उनके बच्चों को नहा लाया, सब कुछ किया, क्या अभी वो उतने ही साफ सुथरा है? जब 15 दिन के बाद गए देखा तो जो गंदगी को वही गंदगी है। अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उल्टा जब पहुंचे स्लम में तो लोगों ने पूछा आप 15 दिन से कहां थे, अभी तक दिखाई नहीं दिए 15 दिन से। बच्चे परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अपने प्रोफेसर से जाकर के बोले ये प्रॉब्लम है, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, कुछ नहीं हो सकता, हम परेशान हो चुके हैं। प्रोफेसर ने कहा सुनो, जब पहले दिन गए थे सारा गंदगी सबसे ज्यादा थी, आप अभी जो गए वो गंदगी ज्यादा थी? जो पहले दिन गए थे वो ज्यादा गंदगी थी, किंतु सालों सालों की गंदगी इकट्ठा हुई थी, लोगों का कोई अवेयरनेस नहीं था। अभी जो आप गए क्या उतनी गंदगी थी? नहीं थी, पर पहली बार ज्यादा गंदगी थी, अवेयरनेस कम था, तब भी आपने काम किया। आपको अच्छा लगा था कि बुरा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, वी एंजॉयड ए लॉट, हमें बहुत खुशी मिली। पहले दिन आपको खुशी मिली, दूसरे दिन खुशी मिली, तीसरे दिन खुशी मिली, 2 महीने के बाद वही काम आप कर रहे हैं पर आप दुखी हो, आप परेशान हो। काम तो वही है, स्लम को सफाई, स्लम एरिया की सफाई करना, लोगों को एजुकेट करना। शुरू में तो आप एंजॉय करते थे वही काम, आज आप फ्रस्ट्रेटेड हो। इसका मतलब है प्रॉब्लम काम में नहीं है, ये काम खराब नहीं है, ये काम फ्रूटलेस रिजल्टलेस नहीं है, या ये काम में फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन कहाँ है? फ्रस्ट्रेशन तुम में है। क्यों? क्योंकि तुम पहले दिन कर रहे थे तो एंजॉय कर रहे थे, काम तो वही था। दो महीने के बाद कर रहे तो फ्रस्ट्रेटेड है, काम तो वही है, फ्रस्ट्रेशन क्यों हुआ? बच्चों ने कहा पता नहीं क्यों हुआ, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। प्रोफेसर ने कहा यही तो प्रॉब्लम है, काम बुरा नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन से बुरा या अच्छा होता है। और वो एक्सपेक्टेशन क्या करता है? तुम्हारे एटीट्यूड को बदलता है। सो ये तुम्हारा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, काम नहीं। पहले दिन तुम बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड में गए थे, हमें यहां अच्छा काम करना है, सफाई करनी है, लोगों को एजुकेट करना है। और धीरे धीरे तुम्हें लगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगा कि ये लोग अब खुद खुद करे, अपने आप करेंगे, खुद ब खुद करेंगे, क्योंकि आप लोगों से एक्सपेक्ट करने लगे। जब लोग नहीं करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड होने लग गए। तो काम फ्रस्ट्रेशन पैदा नहीं करता, काम के पीछे का एक्सपेक्टेशन फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। इस स्टोरी के बेस पर हम कर्मयोग को समझने की कोशिश करेंगे। तो राइट एटीट्यूड ऑफ वर्क कैन मेक इट वर्शिप। तो अभी हमने स्टोरी से समझा कि काम अच्छा या बुरा नहीं होता, फ्रस्ट्रेटिंग या एंजॉयिंग नहीं होता, काम के पीछे का जो एटीट्यूड है वो काम को अच्छा या बुरा बनाता है, एंजॉयबल बनाता है। और हमारे दुख का, परेशानी का कारण क्या है? हमारी एटीट्यूड। एंड वो एटीट्यूड क्या चीज है? एटीट्यूड है एक्सपेक्टेशन। दूसरा मुझे रिकॉग्नाइज करे, दूसरा मुझे तारीफ करे, दूसरा मेरे हिसाब से बदल जाए, दूसरा अच्छा हो जाए। दूसरा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, सारी दुनिया थोड़े ही तुम्हारे कंट्रोल में, तुम थोड़े ही लोगों को बोलोगे कि मैंने अच्छा काम किया तारीफ करो, थोड़े ही लोगों को बोलोगे कि क्योंकि मैंने तुम्हारी सफाई की अब तुम सब साफ रहना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है, दुनिया अपनी मर्जी से चलती है, अच्छा बुरा सब कुछ चलता है। तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम अपने अच्छे कर्म से दुनिया को बदलना चाहते हो, यहीं से तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सटर्नल रिजल्ट डिमांड करता है, विच इज बियॉन्ड योर एबिलिटी और कैपेबिलिटी, जो तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है। पर एटीट्यूड तुम्हारे अंदर का है, तुम एक्सपेक्टेशन को बदल दो, खुद को बदल दो, वो काम अच्छा लगने लगेगा। खुद को कैसे बदले? वही जो एटीट्यूड जो इंटरनल है उसको बदलने की जरूरत है। जब आप अपने एटीट्यूड को बदल देते हो जो कि तुम्हारे हाथ में है, तो वो काम पूजा बन जाती है। जब तुम काम कैसा भी हो उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हो, लोग अप्रिशिएट करें ना करें, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लोग सपोर्ट करें ना करें, इस काम का रिजल्ट जल्दी मिले या देर से मिले, जो सोचा वैसा मिले या ना मिले, अगर आप काम को ही एंजॉय करते हो वो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि एटीट्यूड तो तुम्हारे अंदर की प्रॉब्लम है, तुम इसको बदल सकते हो। तो चेंज द एटीट्यूड यू विल बिकम स्पिरिचुअल, और चेंज द एटीट्यूड यू विल बिकम ए फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, डिप्रेसिंग पर्सन। तो एटीट्यूड के कारण ही कर्म कर्म योग बनता है, अच्छा बनता है या बुरा बनता है। अब जब हम काम करते समय यज्ञ भाव से करते हैं, परमात्मा को सौंप के करते हैं, जो भी रिजल्ट मिले उसको एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं, खुश दुख होने के नहीं, एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं, तो फिर वो कर्म योग में कन्वर्ट हो जाता है। कर्म करते समय जो दो चार चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है, फिर कर्म योग ज्यादा आसान होगा समझने में। पहली चीज है कि जो भी हम काम करते हैं, कोई ना कोई हमारा डिजायर होती है, इच्छा होती है, तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं। काम करते हैं उस काम के फल के प्रति फिर दोबारा वासनाएं या इच्छाएं या डिजायर्स पैदा हो जाते हैं, फिर उस डिजायर के कारण फिर हम अटैच्ड हो जाते हैं उस रिजल्ट के साथ, और ये एक चक्र बन जाता है। अगर काम हम करते हैं, काम के साथ हम अपने आप को अटैच करते हैं, तो वो डुअरशिप का सेंस आता है। सेंस ऑफ डुअरशिप आप समझते हैं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं हो जाता है, और उससे वो जो ईगो पैदा होता है और इच्छा, डिजायर एंड ईगो, ये दोनों मिलके हमारे जो कर्म का, ये दोनों जड़ होते हैं। कुछ भी हम काम करते हैं, यही दोनों उसका रूट कॉज होते हैं। पर स्पिरिचुअलिटी में कर्म को अगर कन्वर्ट करना है, अगर कर्म को ही योग बनाना है, तो फिर हमें उन वासनाओं पर, इच्छाओं पर और ईगो पर काम करना है। जब तक हम अपनी इच्छाओं को नष्ट नहीं करेंगे, इच्छाओं को नष्ट मतलब कर्म का फल जो भी हो एक्सेप्ट करो, कर्म को ड्यूटी समझ के करो, और सब कुछ परमात्मा का है ये समझ के करे, तो फिर वो कर्म योग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कृष्ण गीता में लिखते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, अटैचमेंट को छोड़कर मन को इवननेस के साथ काम करो, और उस काम में जब तुम सिद्धि मीन्स अचीवमेंट, असिद्धि या नॉन अचीवमेंट, कुछ रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, दोनों परिस्थिति में जब तुम अपना मन को शांत एक जैसा बनाते हो, तो वो योग कहलाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो जो कर्म का रिजल्ट या तो दुख देता है या सुख देता है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चले तो सुख है, ना हो तो दुख होता है। पर योग कैसे बनेगा, जब दुखों में भी तुम टूटो नहीं, सुखों में भी उछलो नहीं, और कर्म और फल से अटैचमेंट को हटा दो, जिससे कि तुम्हारा डर भी नहीं रहेगा, गुस्सा भी नहीं रहेगा, तब तुम योगी बन जाओगे। गुस्सा, डर और स्थिर भयमुच, ओके, ये जो डर होता है और जो गुस्सा है, ये दोनों रिजल्ट से अटैच होने के कारण आते हैं। मैंने कोई काम किया, रिजल्ट कैसे होगा, उस चीज का डर है। अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, वो एंगर के रूप में प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब काम करते समय फल जैसा भी हो एक्सेप्ट करने को तैयार रहो, सब कुछ ईश्वर को सौंप दो, अपना ड्यूटी समझ के करो, प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण करो, तो कर्म भी योग हो सकता है। तो इसी को कर्म योग कहते हैं। अब हम जानेंगे भक्ति योग क्या है। ध्यान रखिए, हमारा जो टॉपिक है, ये जो योग के अलग अलग वर्जन्स पब्लिक में मिलता है, वो सब एक्चुअली क्या मीन करते हैं, उनका क्या मतलब है। फिर हम ये जानेंगे, क्या कोई व्यक्ति केवल हठ योग करके योग का जो पर्पस है उसको अचीव कर सकता है, केवल कर्म योग करके, केवल भक्ति योग करके, केवल ज्ञान योग करके योग का जो पर्पस है अचीव कर सकता है या नहीं, ये हम समझेंगे। पर अभी हम उन चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं कि ये चारों को अलग अलग करने से फायदा है या नुकसान है, कौन सा योग आपको करना है। अभी हम जब समझने की कोशिश करते हैं हठ योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, राज योग क्या है, फिर हम जानेंगे कि इनमें कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, या सारे बुरे हैं या सारे अच्छे हैं, इनको हम बाद में जानेंगे। अब हम आते हैं भक्ति योग पर। भक्ति योग, भक्ति के द्वारा उस आध्यात्मिक जो लक्ष्य है, जो स्पिरिचुअल गोल है, उसको अचीव करने की कोशिश करना। और भक्ति का संबंध प्रेम से होता है, इसीलिए भक्ति का मार्ग मतलब द पाथ ऑफ द सुप्रीम लव होता है। दो तीन चीजें इसके बारे में समझते हैं। भक्ति का मतलब परम प्रेम। जब किसी के प्रति आप एब्सोल्यूट प्यार करने लगते हैं, एब्सोल्यूट प्यार क्या होता है, जिस प्यार में किसी भी तरह का कोई दोष ना हो, किसी भी तरह की कोई फ्लॉ ना हो। प्यार में भी फ्लॉ क्या होता है, दोष क्या होता है, प्यार का एक ही दोष है, प्यार में एक ही होता है, उसकी जो बुराई एक ही है, बुरी चीज एक्सपेक्टेशन। आप कहते हो मैं आपसे प्यार करता हूं, अच्छी बात है, पर हजारों एक्सपेक्टेशन रखे हो मेरे साथ। नहीं, मेरे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस मैं आपको प्यार करता हूं। अच्छा ठीक है, पर यह तो है ना कि आप क्योंकि मुझे प्यार करते हो तो मैं भी आपको बदले में प्यार करूं, दैट इज ऑल्सो अनदर एक्सपेक्टेशन। भक्ति का मतलब जहां विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हम अपने आप को सबमिट कर देते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। हठ योग में शरीर और प्राण, नर्व सिस्टम को मजबूत बनाना, स्वस्थ और हेल्दी बनाने के हेल्प करता है। कर्म योग में हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो कुछ हम काम करते हैं, वो अपने लिए या सोशल ऑब्लिगेशन के लिए, उस काम में ऐसा कुछ एटीट्यूड चेंज करे, वो काम हमें स्पिरिचुअल जॉइनिंग में हेल्प करता है। भक्ति हमारी जो इमोशंस हैं, कि एट द एंड ऑफ द डे हम तो ह्यूमन बींग है ना, मनुष्य है, और मनुष्य क्या प्राणी है, और जहां भी प्राण है, लाइफ है, वहां इमोशंस हैं, और इमोशंस के कारण हम सांसारिक चीजों में अटैच्ड हो जाते हैं। अगर हम उन इमोशंस पर काम करें, वो जो इमोशंस को इंस्ट्रूमेंट बना के स्पिरिचुअल जॉइनिंग में यूज करना, भक्ति योग बन जाता है। और इमोशंस में सबसे जो पावरफुल इमोशन होता है, वो है प्यार। आप कहेंगे ये पावरफुल क्यों बोला, क्योंकि बाकी सब चीजें ये प्यार के आगे पीछे होते हैं। आपका गुस्सा भी प्यार के कारण होता है, आपकी नफरत भी प्यार के कारण होता है, आपकी इल्यूजन भी प्यार के कारण होता है। ये प्यार के चारों तरफ बाकी इमोशंस घूमते रहते हैं। अगर ये प्यार को आपने सही जगह लगाया तो बाकी इमोशंस भी अपने आप ठीक हो जाते हैं, गलत जगह प्यार को लगाया बाकी इमोशंस भी खराब हो जाते हैं। सिंपल डे टू डे लाइफ में देखिए ना, मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, मान लीजिए शादी से पहले आप किसी से प्यार करते हैं, या आपकी स्पाउस से आप प्यार करते हैं, और जिससे प्यार करते हैं वो अगर सही नहीं पड़ा, सही इन द सेंस कि आपके आपका ख्याल नहीं रखते हैं, आपके प्यार को रेस्पेक्ट नहीं करता, या वो उसका व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं है, तो उस जो आपने प्यार किया उस प्यार के कारण आपको फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगता है वो वैसा नहीं हो रहा है, आपको गुस्सा भी उसी कारण आता है, आपको पैसे से प्यार है, पैसा ना मिले तो परेशान, कम मिले तो परेशान, पैसा पास में ना आए रहे तो परेशान, दूर रहे तो परेशान। तो ये सारे प्यार का खेल होता है, सारे इमोशंस, वो आपका गुस्सा हो, नफरत हो, इल्यूजन हो, सब कुछ। तो प्यार को जब आप परमात्मा में लगा देते हैं और वो सुप्रीम प्यार को, एब्सोल्यूट लव को, जहां कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, तो वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। भक्ति ईश्वर प्रणिधान, पतंजलि लिखते हैं ईश्वर प्रणिधान। देखिएगा तो ईश्वर के प्रति जो अपने आप को सौंप देना, परमात्मा के प्रति अपने आप को सौंप देना, अपने आप को सबमिट कर देना होल हार्टेडली, उसी को भक्ति कहते हैं। और यहां आपकी जो सेंटिमेंटल या जो इमोशनल पावर है उसको आप मीडियम बनाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में गोल को अचीव करने के लिए। भक्ति का जो मॉडर्न स्वरूप आजकल हमें देखने को मिलता है कि अगर आप भक्ति मार्ग ही हैं, सो कॉल्ड भक्ति मार्ग भक्त हैं, तो वो जो नाचना पड़ेगा, वो नाचते हैं ना, कीर्तन, कीर्तन करना, नाचना, गाना, उड़पटांगे हरकतें करना, पब्लिक में वो करके गिर जाना, क्या जी कृष्ण अंदर, कृष्ण भक्ति जाग गई, ये तो पाखंड है, हिपोक्रेसी है। और हिपोक्रेसी नहीं भी है तो कुछ लोग जो इल्यूजन है, जो मेंटल इल्यूजन है, उसके कारण उनके साथ होता है। भक्ति तो इंटरनल चीज है ना, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं या पति से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, किसी से भी प्यार करते हैं, थोड़ी आप बाजार में पब्लिक में जाकर के उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं आई लव यू, प्राइवेट है। तुम्हारा और परमात्मा के बीच का अपना रिश्ता है। तो ये जो नाचना गाना, इसका तो भक्ति से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, हो सकता है टेम्पररीली आपको थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, और कहीं आप भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर उछल उछल नाच नाच करके भजन कीर्तन करते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, मेंटली आप थोड़ा पीस फील करें, क्योंकि आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, थक जाते हैं, या भगवान का नाम लेने से जिस पर आपकी श्रद्धा है तो आपको थोड़ा आप नॉर्मल हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। पर इसका अर्थ नहीं कि इसका कोई स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई हेल्प करेगा। भक्ति तो अपने आप को सौंपने का नाम है। जो भी मेरे पास है, मेरा सब कुछ तू ही तू है ना, तुम ही नहा पिता वसो तुम माता शतक क्रतो। जब तुम प्रेम में पागल हो जाते हो, किसी के लिए अपने आप को सबमिट कर देते हो, फिर तुम नहीं रहते हो, तुम वो हो जाते हो, फिर वही रहता है, तुम नहीं रहते हो, तुम ही हो, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही मेरा धन हो, तुम ही मेरा ज्ञान हो, तुम ही सब कुछ हो। कुछ लोग भगवान के लिए शब्द यूज करते हैं, कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए शब्द यूज करते हैं, कुछ लोग अपने पैसे के लिए शब्द यूज करते हैं, कुछ लोग अपने पावर के लिए शब्द यूज करते हैं। जहां आपका प्यार है, आप उसी को बोलोगे, तू ही माँ हो, तुम ही पापा हो, तुम ही धन हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही सब कुछ हो। तो भक्ति का ये विशेष भावना ये होता है। और तो जब आप अपने इमोशन को एक नॉर्मल लेवल से बहुत ऊपर को उठा लेते हैं, धन से, संपत्ति से, पैसे से, नाम से, फेम से, घर से, परिवार से, बच्चों से, स्पाउस से ऊपर उठा के एक हायर लेवल पर अपने इमोशन को ले जाते हो, और वो हायर लेवल जहां आत्मा और परमात्मा है, जिसको हम डिवाइन प्लेन कहते हैं, और उस इमोशन को जब उस लेवल पर ले जाते हो, तो तुम्हारा हर वो छोटी मोटी इमोशंस भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तुम्हारे जो इमोशन का जो ऑब्जेक्ट है वो परमात्मा बन जाता है, तुम्हारे प्रेम का जो ऑब्जेक्ट है वो परमात्मा बन जाता है, तुम्हारे अफेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो परमात्मा बन जाता है, और तुम्हारा जो सेंटिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो भी परमात्मा ही बन जाता है। तो फिर ये भक्ति योग है। ध्यान दीजिए, हमने हठ योग जाना, शरीर नर्व सिस्टम माइंड को हेल्दी और मजबूत बनाने के लिए जो हमें हेल्प करता है। कर्मयोग, हमारे कर्मों को हम अपने एटीट्यूड चेंज करके काम करते समय कर्म को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो कर्म योग बन जाता है। जब हम अपने इमोशन को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए, और हमारे प्यार को, अफेक्शन को, हमारे इमोशंस को हम एक सरफेस लेवल से ऊपर उठा के या बहुत अंदर ले जा करके आत्मा के लेवल पर ले जाते हैं, परमात्मा के लेवल पर ले जाते हैं, तो वो भक्ति हो जाती है। अगले बार हम जानेंगे जो ज्ञान योग क्या है और राज योग क्या है। जब इन सब योगों को हम ठीक ठीक समझेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि क्या ये सब अलग अलग है या एक है, और मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। तो आज के लिए इतना ही है। कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, एक दो मिनट आप पूछ सकते हैं, मैंने शायद थोड़ी एक दो मिनट जल्दी कर ली। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और समथिंग यू कैन आस्क मी। हाँ, गुड। नीरज जी का क्वेश्चन है, हाउ डज वन डिटरमाइन देयर ड्यूटी। सो ड्यूटी, हमारे जो शास्त्रों में जो ड्यूटीज की परिभाषाएं दी है, बेसिकली आपके पांच ड्यूटीज हैं फंडामेंटल, बाकी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ड्यूटी है तुम्हारे प्रति, द फर्स्ट ड्यूटीज टुवर्ड्स योर सेल्फ। You have to be physically, mentally, spiritually healthy, good, खुश रहना। सारा ओवरऑल सारे हिंदू धर्म का जो वैदिक धर्म का जो मूल बेसिक क्या है, टू मेक myself happy, मुझे खुश रहना है। वो खुश इस जीवन में भी, इन दिस लाइफ also, इन दिस बॉडी also, आफ्टर I am losing this body also, खुश रहना। So that is your duty, how you are making yourself happy and healthy. कभी कभी हम हमारा तरीका समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे खुश रहूंगा, तो हम गलत गलत चीजें करते हैं। That's a different thing. That's the first duty. Then the second thing is, आपकी दूसरी ड्यूटी होता है आपके पेरेंट्स के प्रति, जिसको हम पितृयज्ञ कहते हैं। खैर, ये तीसरी ड्यूटी है। सेकेंड ड्यूटी बताया गया नेचर के प्रति, आपकी देवता, देवता का मतलब नेचर है, वो हवा हो, पानी हो, सूरज हो, रोशनी हो, जो भी है, जो भी, आई थिंक एवरी वन नोज व्हाट इज देवता, है ना, जिसका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है तो उसको देवता कहते हैं। उनका टेक केयर करना, उनके लिए जो कुछ करना, दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड देवयज्ञ। थर्ड वन इज पितृयज्ञ, अपने पिता माता का, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति जो हमारा ऑब्लिगेशन है वो हमारी ड्यूटी है। और फोर्थ बताया, जो तुम्हारे आसपास जो दूसरे लोग हैं, दोज हु आर इन नीड, जिनकी जरूरतें हैं, जो जो सफर कर रहे हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए कुछ करना तुम्हारी ड्यूटी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको आम भाषा में आप सुनते हैं कि उनके प्रति हमारा करना, बिकॉज ऑफ आवर काइंडनेस, मे बी आई एम ए ग्रेट पर्सन सो आई एम हेल्पिंग अदर्स, मे बी आई एम ए काइंड पर्सन आई एम हेल्पिंग अदर्स। सो मोस्ट ऑफ टाइम वी आर लर्न टू बी काइंड, पर हमारा शास्त्र कहता है काइंडनेस तो ठीक है सरफेस लेवल पर, बट इफ यू आर डूइंग इट इन ए स्पिरिचुअल लेवल, काइंडनेस मीन्स यू आर सुपीरियर than the person who you are favoring to. तुम superior नहीं हो, तुम अपना duty समझो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो परमात्मा के द्वारा दिया गया है, तो तुम्हारा ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज आल्सो मेड बाय द गॉड एज क्रिएटेड बाय द गॉड, दैट्स योर ड्यूटी। बिल्कुल इसका ऐसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पिता के, मेरे पेरेंट्स के चार बच्चे हैं और मैं बहुत धनी रिच बना और हेल्दी बना, मेरा एक भाई या बहन बहुत वीक है, कमजोर है, तो जनरली व्हाट हैपेंस, माय पेरेंट्स टेक केयर ऑफ दैट वीक सिबलिंग, जो कमजोर है मेरे पेरेंट्स उसकी ज्यादा ख्याल रखते हैं। सपोज मेरे पेरेंट्स नहीं है, उनका डेथ हो गया, तो इट्स ना, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी जो कमजोर भाई या बहन है उसका टेक केयर करूं, ये ऑब्लिगेशन है, तुम फेवर नहीं कर रहे हो, यू शुड डू इट एंड यू हैव टू डू इट। आजकल बहुत लोगों की समझ में नहीं आता है, पर अगर आप एंशियंट इंडियन लोगों, इवन आज भी जो गांव में लोग रहते हैं, उनको ये नहीं लगता है कि मेरे पापा का डेथ हो गया तो मेरी भाई बहन की जिम्मेदारी, मेरी उनकी जिम्मेदारी वो वैसे ही लेते हैं जैसे वो अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, एंड दे थिंक द बिग ब्रदर और बिग सिस्टर थिंक्स दिस इज माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम। इन द सेम वे व्हेन यू स्पिरिचुअली थिंक द गॉड इज आवर पेरेंट्स, एवरीथिंग इज गॉड्स, तुम भी ईश्वर का हो, तुम्हारे पड़ोसी भी ईश्वर का है, जब तुम्हारे पड़ोसी परेशान है तो यू आर गोइंग टू हेल्प हिम और हर, नॉट बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग समथिंग फेवर टू हिम, जस्ट थिंकिंग दैट इट्स माई ड्यूटी, क्योंकि मेरे पास है मैं दूसरों को हेल्प करूं। एंड द लास्ट वन बोला प्राणियों के लिए, मतलब भूत यज्ञ, मतलब जो भी आसपास जो हमारे नॉन ह्यूमन लाइफ्स हैं उनकी भी सेवा करना, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, वो भी ईश्वर के संतान है, दे आर ऑल्सो चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, सो आई एम ऑल्सो चाइल्ड ऑफ द गॉड, सो इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम। सो ये फंडामेंटली पांच ड्यूटीज हमारे शास्त्र में बताया, बाकी डे टू डे लाइफ में क्या ड्यूटी है नहीं ड्यूटी है, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड डिफरेंट सिचुएशन, वो फिर एवरी सिंगल कर्म विल बी डिफाइंड बेस्ड ऑन क्या सर्कमस्टांसेस है या कर्म है, पर बेसिकली जो भी संसार में है उन सबके प्रति मेरा ड्यूटी है। थैंक यू वेरी